एकेत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकेत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका दूसरा साथी इस ज्ञान यात्रा में
और मैं हूं आपकी पहली मेजबान। आज हम थोड़ा समय में पीछे चलेंगे, लगभग 400 साल पीछे।
हाँ, और बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो मतलब आज भी उतनी ही मौजू है जितनी शायद तब रही होगी।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट बर्टन की विशाल अद्भुत कृति द एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली।
मेलानकोली यानी उदासी, विषाद, चिंता, ये शब्द तो आजकल बहुत आम है।
हाँ, मानसिक स्वास्थ्य पर इतनी बात जो हो रही है तो ये देखना वाकई दिलचस्प है कि सदियों पहले एक विद्वान ने इसे कैसे देखा था, इसकी गहराइयों को कैसे समझा था।
सही कहा। और सवाल ये है कि क्या एक 17वीं सदी की किताब आज के हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भरे जीवन के लिए कोई राह दिखा सकती है?
हाँ, क्या उसमें कुछ ऐसा है जो आज भी काम आ सकता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं।
तो पहले जरा लेखक से मिलते हैं, रॉबर्ट बर्टन। ये साहब 1577 से 1640 तक इंग्लैंड में रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विद्वान थे, पादरी थे,
लाइब्रेरियन भी, मतलब पक्के किताबी कीड़े कह सकते हैं।
हाँ, लेकिन सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ हजारों किताबें पढ़ी नहीं थी, वो खुद अपनी पूरी जिंदगी उस चीज से जूझते रहे जिसे वो मेलानकोली कहते थे।
अच्छा, मतलब गहरी उदासी, चिंता, मन का भारीपन, वो खुद इसे महसूस करते थे।
जी हाँ, तो उनका लिखना सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, ये उनके लिए एक निजी यात्रा थी एक तरह से।
ये बात बहुत अहम है, उन्होंने खुद लिखा भी है ना?
हाँ, उन्होंने कहा, मैं उदासी से बचने के लिए व्यस्त रहकर उदासी के बारे में लिखता हूँ।
सोचिए, इतना बड़ा ग्रंथ लिखना उनके लिए एक किस्म की थेरेपी थी।
बिल्कुल, और उन्होंने अपना एक मजेदार उपनाम भी चुना था, डेमोक्रेटस जूनियर।
हाँ, डेमोक्रेटस, वो पुरानी यूनानी दार्शनिक जो दुनिया की बेवकूफियों पर हंसते थे।
वही तो, बर्टन भी दुनिया के दुखों को देखते हैं, लेकिन उनकी नजर में हंसी के साथ साथ गहरी हमदर्दी भी है। वो सिर्फ एक विद्वान की तरह नहीं लिखते, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जिसने खुद वो दर्द महसूस किया हो। उनका अधिकार सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, निजी अनुभव से भी आता है।
बिल्कुल।
तो ये तो हुए लेखक, अब आते हैं इस महाग्रंथ पर, द एनाटॉमी ऑफ मेलानकोली। ये 1621 में पहली बार छपी
और बर्टन साहब इसे जिंदगी भर बढ़ाते रहे, नए एडिशन निकालते रहे।
जी, और ये कोई सीधी साधी एक लाइन में चलने वाली किताब नहीं है, ये एक विषय का विश्वकोश है।
हाँ, बर्टन का मकसद था मेलानकोली, मतलब उदासी, और उससे जुड़ी हर चीज, चिंता, दुख, डर, यहाँ तक कि वो अस्तित्व वाले बेचैनी, उसका पूरी तरह से विच्छेदन करना,
एनाटॉमी करना।
बिल्कुल, वो इसे हर नजरिए से देखते हैं, उस जमाने की डॉक्टरी समझ से, जिसे ह्यूमर थियरी कहते थे।
हाँ, वो चार ह्यूमर वाली बात,
खून, कफ, पीला पित्त और काला पित्त।
जी, वही बर्टन और उस दौर के लोग मानते थे कि मेलानकोली तब होती है जब शरीर में काला पित्त मतलब ब्लैक बाइल जरूरत से ज्यादा हो जाता है। ये उस जमाने की सोच थी।
तो इस डॉक्टरी नजरिए के अलावा दर्शन, धर्म, ज्योतिष, साहित्य, इतिहास, समाज, मतलब हर पहलू से मेलानकोली को समझने की कोशिश की है।
हाँ, ये किताब एक ही साथ मेडिकल टेक्स्ट बुक भी है, फिलॉसफी भी है, सेल्फ हेल्प गाइड भी, और दुनिया भर की कहानियों और कविताओं का संग्रह भी।
और इसकी शैली भी अनोखी बताई जाती है, बहुत लंबी, बहुत विस्तार में, और अक्सर एक बात से दूसरी बात पर निकल जाती है।
हाँ, जिसे डिग्रेसिव या विषयांतर वाली शैली कहते हैं। कुछ लोगों को ये शायद भटकाव लगे, लेकिन शायद यही इसकी खूबी है।
कैसे?
हो सकता है ये उदास मन की भटकती फितरत को दिखाता हो, या फिर ये दिखाता हो कि ज्ञान की हर शाखा कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
अच्छा।
हाँ, ये आपको एक बौद्धिक भूल भुलैया में ले जाती है, जहाँ हर कोने में कुछ नया मिलता है। तो इसकी संरचना कैसी है? आपने कहा तीन हिस्से हैं, जे तीन बड़े पार्टीशन। पहला हिस्सा है मेलानकोली के कारण और लक्षण।
ठीक है, कॉजेज एंड सिम्टम्स।
दूसरा हिस्सा इसके इलाजों पर है,
क्योर्स।
और तीसरा?
तीसरा हिस्सा दो खास तरह की मेलानकोली पर है, प्रेम से जुड़ी उदासी और धर्म से जुड़ी उदासी, लव मेलानकोली और रिलीजियस मेलानकोली।
अच्छा, चलिए इन हिस्सों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहला हिस्सा कारण और लक्षण, इसे किताब का डायग्नोसिस वाला भाग कह सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल। बर्टन यहाँ बताते हैं कि मेलानकोली क्या है, वही काले पित्त वाली थ्योरी, और ये कैसे अलग अलग रूप ले सकती है, कभी हल्की कभी गहरी, अस्थायी या स्थायी।
और कारणों की लिस्ट वो तो कहते हैं बहुत लंबी है।
हाँ, ऐसा लगता है बर्टन ने दुनिया में हर चीज को मेलनकॉली का संभावित कारण मान लिया हो।
अलौकिक कारण भी हैं, जैसे भगवान की मर्जी या शैतान का असर
उस जमाने के हिसाब से।
जी, और फिर प्राकृतिक कारण हैं, जैसे खानदान से मिली प्रवृत्ति, उम्र, स्वभाव, ये सब।
और बाहरी या माहौल से जुड़े कारण भी।
हाँ बिल्कुल, गलत खान पान, खराब हवा, बहुत ज्यादा या बहुत कम कसरत, नींद की कमी या ज्यादती, इन्हें वो छह गैर प्राकृतिक चीजें कहते थे जिन पर ध्यान देना जरूरी है।
ये बातें तो आज भी कितनी सही लगती हैं, है ना, लाइफस्टाइल फैक्टर्स।
बिल्कुल, और फिर हैं सामाजिक और मानसिक कारण, गरीबी, अकेलापन, हद से ज्यादा पढ़ाई करना।
ज्यादा पढ़ाई करना भी।
हाँ, किसी अपने को खो देना, शर्मिंदगी, डर, जलन, लिस्ट बहुत लंबी है। कमाल की बात यह है कि 400 साल पहले कोई व्यक्ति इन सब चीजों को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहा था।
सच में, और लक्षण शारीरिक लक्षणों का भी जिक्र है।
हाँ, जैसे रंग का दब जाना, दुबलापन, पाचन की समस्याएं, लेकिन ज्यादा ध्यान खींचते हैं मानसिक लक्षण। बर्टन लिखते हैं, बिना किसी वजह के डर और दुख महसूस होना।
ये तो आज की एंग्जाइटी जैसा लगता है।
हाँ, शक करना, चिड़चिड़ापन, मन में बुरे ख्याल आना, और कभी कभी तो अजीब वहम होना, जैसे किसी को लगे कि वो कांच का बन गया है या मिट्टी का बर्तन।
बाप रे, सोच कर भी अजीब लगता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इलाज पर। ये पहले हिस्से का जवाब हुआ।
जी, और जैसे कारण अनगिनत थे, वैसे ही बर्टन इलाज भी ढेरों बताते हैं।
शुरुआत कहां से करते हैं?
सबसे पहले वही छह गैर प्राकृतिक चीजें ठीक करना, मतलब खान पान, हवा, कसरत, नींद वगैरह पर ध्यान देना। ये तो आज भी डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं।
सही बात है। और फिर?
फिर कुछ उस जमाने के इलाज हैं जो आज हमें अजीब लग सकते हैं, जैसे जुलाब लेना या शरीर से खून निकालना, ब्लड लेटिंग।
हाँ, ये तो अब नहीं होता, लेकिन ये क्या दिखाता है?
ये दिखाता है कि तब भी लोग मानसिक तकलीफ के लिए शारीरिक हल ढूंढने को कितने बेचैन थे।
लेकिन क्या मानसिक या आध्यात्मिक इलाजों की भी बात है?
हाँ बिल्कुल है, और इस सेक्शन का सबसे असरदार हिस्सा वही है। यहाँ बर्टन की सोच अपने समय से बहुत आगे लगती है। उनका सबसे मशहूर नुस्खा है, एकांत में ना रहें, निष्क्रिय ना रहें, बी नॉट सॉलिटरी, बी नॉट आइडल।
ये लाइन तो मैंने सुनी है, ये जैसे इस किताब का सार है।
हाँ बिल्कुल, मतलब अकेले मत पढ़ो और कुछ ना कुछ करते रहो। बर्टन मानते थे कि अच्छी दोस्ती, लोगों से मिलना जुलना और किसी सार्थक काम में लगे रहना, ये मेलनकॉली का बेहतरीन इलाज है।
ये तो आज भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, सोशल कनेक्शन और मीनिंगफुल एक्टिविटी।
बिल्कुल, और भी बहुत कुछ सुझाते हैं बर्टन, जैसे पढ़ना, खासकर इतिहास या मजेदार कहानियां।
पढ़ना बिब्लियोथेरेपी जैसा।
हाँ, संगीत सुनना, जिसे वो ताकतवर जादू कहते हैं, घूमना फिरना, बागवानी जैसे शौक पालना, यहाँ तक कि दर्शन और धर्म से हिम्मत जुटाना, मुश्किलों को सहने का हौसला पाना, प्रार्थना करना।
वाह, मतलब मन को बहलाना, उसे अच्छी चीजों में लगाना। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वो दो खास तरह की मेलनकॉली, प्यार वाली और धर्म वाली।
जी, लव मेलनकॉली पर तो बर्टन ने खूब लिखा है, कारण किसी की सुंदरता पर फिदा हो जाना।
फिदा हो जाना। और लक्षण?
लक्षण नींद उड़ जाना, जुनून सवार होना, बहुत ही खराब शायरी लिखना।
खराब शायरी लिखना, ये तो आज भी होता होगा।
हाँ, जान, निराशा, ये सब।
और इसका इलाज बर्टन क्या कहते हैं?
इलाज भी दिलचस्प है। कहते हैं कि जिससे प्यार है उसकी कमियों पर ध्यान दो, खुद को किसी मुश्किल काम में लगा दो, घूमने निकल जाओ, कोई नया प्यार ढूंढ लो, या फिर शादी कर लो। लगता है बर्टन शादी को आखिरी इलाज मानते थे।
कमाल है। और दूसरी वाली, धार्मिक मेलनकॉली।
हाँ, इसके दो रूप बताए हैं। एक तो है निराशा, ये सोचना कि भगवान मुझसे नाराज हैं, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इसका इलाज है ईश्वर की दया पर भरोसा करना, सलाह लेना।
और दूसरा रूप?
दूसरा रूप है कट्टरता, मतलब धर्म का जरूरत से ज्यादा जुनून, अंधविश्वास। बर्टन जो खुद पादरी थे, वो संतुलित और समझदारी भरे विश्वास की सलाह देते हैं।
तो ये तो हुई किताब की संरचना और उसमें क्या क्या है। अब अगर हम इसके मुख्य संदेशों को समेटना चाहें तो क्या निकलेगा?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है उदासी की सार्वभौमिकता। बर्टन बार बार ये कहते हैं कि इससे कोई नहीं बच सकता।
सारी दुनिया पागल है, उदास है।
हाँ, ये कहकर वो असल में इस एहसास से जुड़े कलंक को कम करते हैं। वो एक तरह से कहते हैं कि देखो, ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, तुम अकेले नहीं हो।
ये एहसास ही बहुत बड़ी राहत दे सकता है।
और दूसरा?
दूसरा बड़ा आइडिया है मन, शरीर और माहौल का गहरा कनेक्शन। बटन की सोच पूरी तरह होलिस्टिक थी। वो समझते थे कि हमारा मूड सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं है, वो हमारे खान पान, नींद, कसरत, रिश्तों, यहाँ तक कि मौसम, सब पर निर्भर करता है।
ये तो बहुत आधुनिक सोच लगती है।
तीसरा संदेश।
तीसरा जो मुझे बहुत पसंद है, ज्ञान और काम में लगे रहना एक दवा की तरह है। बिब्लियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसकी झलक मिलती है। बटन ने खुद को व्यस्त रखने के लिए लिखा, पढ़ना, कुछ नया सीखना, किसी काम या शौक में डूब जाना, ये चीजें दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद हैं।
सही कहा। चौथा।
चौथा है संतुलन का महत्व। हर चीज में मॉडरेशन, अति से बचना, चाहे वो पढ़ाई हो, प्यार हो या धर्म। मेलानकोली खुद एक तरह का असंतुलन है, इसलिए इलाज संतुलन खोजने में ही है।
बिल्कुल। और कोई?
हाँ, एक और है, सहानुभूति और साझा दुख का एहसास। ये किताब सिर्फ जानकारी का पिटारा नहीं है, ये एक हमदर्द दोस्त जैसी है जो कहती है, मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ, और तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने ये महसूस किया है।
ये बहुत खूबसूरत बात है। तो ये तो हुए कुछ मुख्य संदेश। अब जरा उन यादगार पंक्तियों पर आते हैं जो इस किताब से निकल कर आती हैं।
हाँ, इसमें बहुत सी ऐसी पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। सबसे पहले तो वही पंक्ति जिसने बर्टन को लिखने पर मजबूर किया, मैं उदासी से बचने के लिए व्यस्त रहकर उदासी के बारे में लिखता हूँ।
ये उनके मोटिवेशन और काम के थेरेप्यूटिक वैल्यू को दिखाती हैं।
बिल्कुल। और फिर वो अमर सला, एकांत में ना रहें, निष्क्रिय ना रहें।
हाँ, बी नॉट सॉलिटरी, बी नॉट आइडल, दो छोटी सी बातें लेकिन इनमें कितनी गहराई है। सामाजिक जुड़ाव और सक्रिय जीवन का महत्व।
और आज की दुनिया में जहां अकेलापन इतना बढ़ रहा है, ये सलाह तो और भी ज्यादा जरूरी लगती है।
सही कहा। और कोई पंक्ति?
वो थोड़ी चौंकाने वाली लेकिन सच के करीब लगती पंक्ति, सारी दुनिया पागल है, उदास है, और कौन नहीं है।
ये फिर से उस सार्वभौमिकता की बात करती है और इसमें एक अजीब सी तसल्ली है ना, कि हम सब इसमें साथ हैं।
जी हाँ। और एक और है, पूरी दुनिया लाइलाजों का अस्पताल है। ये थोड़ी निराशाजनक लग सकती है, पर ये भी वही साझा दुख वाली बात है।
ये पंक्तियां वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस 400 साल पुरानी किताब की बातें आज हमारे किस काम आ सकती हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं?
मेरे ख्याल से पहला तो यही कि मानसिक स्वास्थ्य को टुकड़ों में ना देखें, बल्कि पूरी तस्वीर की तरह समझें। होलिस्टिक अप्रोच, हमारा मन, तन, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा माहौल, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हमें सबका ध्यान रखना होगा।
बिल्कुल। दूसरा?
दूसरा, पढ़ने और कुछ नया सीखते रहने की आदत डालें। बिब्लियोथेरेपी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दिमाग को एक्टिव रखना, उसे अच्छी खुराक देना, ये मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जैसे बटन ने किया।
अपनी नई भाषा, कोई हुनर या बस अच्छी किताबें पढ़ना। तीसरा?
तीसरा, एक रूटीन और एक्टिविटी की ताकत को समझें, निष्क्रिय न रहें। भले ही छोटा सा काम हो, कोई शौक हो, या बस सुबह उठकर थोड़ी देर टहलना, एक नियमित दिनचर्या मन को स्थिरता देती है। खासकर जब मूड खराब हो, तब जबरदस्ती ही सही, कुछ करना अक्सर मददगार होता है।
ये बहुत जरूरी बात है। चौथा?
चौथा, रिश्तों की अहमियत समझें, एकांत में न रहें, दोस्तों से, परिवार से जुड़े रहें, अपनी बातें शेयर करें, दूसरों की सुनें। आजकल हम डिजिटल दुनिया में शायद ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं, पर असल जुड़ाव वो कम हो रहा है। बर्टन की सलाह हमें असली कनेक्शन बनाने की याद दिलाती है।
हाँ, ये बहुत प्रासंगिक है आज। और पांचवा?
पांचवा, मानसिक संघर्ष को लेकर शर्म महसूस न करें, इसे सामान्य समझें। बर्टन हमें दिखाते हैं कि उदासी या चिंता कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से इंसानी अनुभव का हिस्सा रही है। इसे स्वीकार करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। आत्मकरुणा जरूरी है।
ये सारे नुक्ते बहुत काम के हैं। तो अंत में, इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? आपके लिए क्या है?
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि इंसानी मन कितना जटिल और गहरा है, और उसे समझने के लिए कितनी हमदर्दी और धीरज चाहिए। बटन कोई फटाफट वाला जादू का इलाज नहीं बताते, लेकिन वो ये उम्मीद जरूर जगाते हैं कि समझदारी, संतुलन और दूसरों से जुड़कर जीने में ही रास्ता छुपा है।
मेरे लिए सबसे यादगार बात बटन की अथाह जिज्ञासा और उनकी ईमानदारी है। वो खुद जूझ रहे थे और उसी संघर्ष से ये ज्ञान निकला। ये किताब याद दिलाती है कि मुश्किल दौर में भी सीखने, समझने और रास्ता खोजने की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये सिर्फ एक पुरानी धूल भरी किताब नहीं है, ये तो जैसे परेशान मन के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली देने वाली लाइब्रेरी है।
बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी पुरानी डॉक्टरी बातें भले ही आज काम की ना हो, लेकिन इसकी इंसानियत, इसकी सहानुभूति और इसका यह अटूट विश्वास कि अंधेरे में भी रोशनी ढूंढी जा सकती है, शायद यही इसका असली कालजयी खजाना है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।